ओम शांति। अभी हम सबके बीच हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार कैप्टन शिव सिंह भाई जी। शिव सिंह भाई जी का संक्षिप्त परिचय। शिव सिंह भाई बाल्यकाल से ही अपने माता पिता के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाते थे, तो एक ऐसी जागृत आत्मा जिसका जन्म ही दिव्य परिवार में हुआ और जिसको बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान मिला, तो ऐसी एनलाइटेंड आत्मा हमारे सामने। भाई साहब ने बीएससी बीटेक एंड एमटेक किया है और वो नेवी में एज इंजीनियर उन्होंने पहले एनडीए में 92 में ज्वाइन किया, उसके बाद नेवी में कमीशन हुए 96 में और उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अलावा उनके कई सारे मास्टर्स डिग्री हैं, पीजी डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ एंड एमबीए सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। भाई साहब अभी डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली में पोस्टेड हैं और उनको ऐसी कोई भी सिक्योरिटी फोर्स नहीं, डिफेंस फोर्स नहीं, जहां भाई साहब ने सेवाएं ना दी हों। जब से सिक्योरिटी सर्विसिंग विंग बना है, मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वो विंग के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, तो शुरू से ही एसएसडब्ल्यू के फॉर्मेशन में भी उनका रोल रहा है। भारतवर्ष का कोई कोना, कोई फोर्स नहीं है जहां उन्होंने जाकर सोल्जर्स की सेवा ना की हो। उन्होंने नेवी में बहुत सारे ऑपरेशनल ट्रेनिंग, रिफिट वगैरह अपॉइंटमेंट्स बखूबी किए हैं और उनको सौभाग्य मिला था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी ब्रीफ किया है, पर्सनली मिले हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए भाई साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो उन्होंने जब मैंने सेवाएं शुरू की तो उन्होंने ये लेक्चर मुझसे भी लिवाया था कुछ साल पहले, स्लीप मैनेजमेंट। देखिए स्लीप कितनी नेचुरल चीज है, आज ये दशा है कि उसके भी मैनेजमेंट की क्लास ली जा रही है, तो अलर्ट होके सुने, बाकी आपको सोना आ जाएगा इसको अच्छे से सुनने के बाद। ओम शांति।
ओम शांति। तो आप लोग कम से कम एक रात तो अभी हो गई होगी, कहीं की दो रात भी हो गई, नींद आ रही है बराबर? तो सवेरे जल्दी उठे तो फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ? आदत तो नहीं होगी ना जल्दी उठने की? तो आज का ये विषय है, एक नया विषय है और थोड़ा डिफरेंट विषय है, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज है जो हमारे हर एक की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और हम लोग एक बहुत समय इसमें बिताते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत चीजें उसके बारे में मालूम नहीं। हमें दिन में कितना सोना चाहिए? 8 घंटा? 6 घंटा? कितना सोना चाहिए? ओके, ठीक है। तो हम ये ऐसे ही कुछ प्रश्नों के ऊपर देखेंगे। तो मैं गिरीश भाई का लास्ट का सुन रहा था, गिरीश भाई जो बता रहे थे मेडिटेशन के ऊपर, और तो मैंने सोचा वहीं से मैं शुरू करूं। जब मैं एकेडमी में था तो आप जानते हो नेवी में एक चीज जरूरी होती है कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए, है ना। तो एकेडमी में जब एनडीए की ट्रेनिंग में भी 3 साल ट्रेनिंग होती है तो उसमें स्विमिंग बहुत जरूरी है। तो मेरा ही एक कोर्समेट था, वो हिमाचल का था, पहाड़ी था, तो पहाड़ी लोग बहुत ऐसे फिट होते हैं ना, क्योंकि पहाड़ी में होते तो स्ट्रेंथ वाइज बहुत फिजिकली बहुत फिट होते हैं, लेकिन उसको पानी से बहुत डर लगता। स्विमिंग में बस पानी देखा तो बट एकेडमी में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म ऐसा आया था, तो उसमें फिर पास करना ही करना, उसके बाद फिर अलाउड नहीं, तो वो पास हुआ नहीं, तो फिर उसको छुट्टी से, जितनी छुट्टी होती है टर्म ब्रेक में 4 हफ्ता, तो 1 हफ्ता ऐसे जो भी फेलियर्स होते हैं उन लोगों को 1 हफ्ता अर्ली बुला लेते हैं और उनको फिर खास ट्रेनिंग देते हैं। अब उसको 1 हफ्ता जल्दी बुलाया और वहां तो जो ट्रेनिंग कराते हैं जो हमारे उस्ताद लोग होते हैं, हमारे नेवी के तो सीनियर सेलर्स होते हैं, तो वो तो आपको स्विमिंग कितना भी पानी पिला पिला के भी सिखाएंगे, कि उनका काम सिखाना है। और जो व्यक्ति पानी से डरता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको भागने दौड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहाड़ी वाला था, वो एकदम फिट था, लेकिन इसमें उसको बहुत डर लगता। तो वो 1 हफ्ता एकेडमी में जल्दी जाना था, वो नहीं गया उधर, वो मेरे पास आ गया, मैं जहां रहता था, मतलब मैं शिव, मैं इधर 1 हफ्ता रहूंगा, तू मुझे स्विमिंग बराबर सिखा। अब मैं तो कोर्स में तो मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, तो हम स्विमिंग जाते थे स्विमिंग पूल में और मैं बताता था भाई ऐसे स्ट्रोक करो धीरे धीरे, क्योंकि हम तो बचपन से स्विमिंग करते थे तो हमारे लिए बहुत ईजी था। और कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि जैसे मैं एक्शन करता हूं एग्जैक्टली वैसे वो एक्शन करने लगे ना, मतलब बिल्कुल पाँव भी ऐसे ऐसे करेगा, हाथ भी ऐसा एग्जैक्ट, अगर आप एक्शंस देखेंगे ना शायद एकदम सेम था, लेकिन मैं तैरता रहता था और वो डूबता रहता था, एक्शन सेम थे, क्या रीजन होगा? हाँ, पैनिक, पैनिक था, पानी से तो घबराहट थी लेकिन मेरे से तो डर नहीं था ना, उसको उधर तो उस्ताद उसको पिला पिला के, पानी पिला पिला के भी सिखाएगा, लेकिन मेरे से तो डरता नहीं, एक्सपीरियंस है ना। ऐसे फिजिकल लेवल पे आप देखेंगे तो हमारे एक्शन सिमिलर थे, बट कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर मुझे विश्वास था, मुझे आती है स्विमिंग, मैं तैर रहा था, और उसको वो ट्रस्ट या विश्वास नहीं था, तो सेम एक्शन होते हुए भी उसका रिजल्ट अलग था। तो हम मन से जो सोचते हैं ना उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। अभी गिरीश भाई ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कैसे एक सपने में एक कुत्ता आया और उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर, बीपी सब बढ़ रहा, आपको दुख या तकलीफ का अनुभव हो रहा है, तो जब वो नेगेटिव चीजें अनुभव कर सकते हैं तो पॉजिटिव भी अनुभव कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों नहीं हम पॉजिटिव इमेजिनेशन करें और हमको वो पॉजिटिव चीजें अनुभव होगी, वो फर्स्ट स्टेप है और वो होगा, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता में उससे एक कदम और ऊपर है। एक होता है इमेजिनेशन और एक होता है रियलिटी, दोनों में फर्क है। इमेजिनेशन तो फिर भी कहीं ना कहीं आप सोचते हो है नहीं, लेकिन चलो मैं सोच रहा हूं, और दूसरी चीज जो रियलिटी है उसमें तो मुझे 100% विश्वास है, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो अभी तक आप इमेजिनेशन कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अच्छा मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ज्योति बिंदु हूं, यहां रह रही हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, परमात्मा का एक रूप इमेजिन। जब आध्यात्मिकता में थोड़ा आगे चलकर समझते हैं कि ये रियलिटी है, तो वो सोचने में एक व्यक्ति इमेजिनेशन से सोचता है और एक व्यक्ति रियलिटी से सोचता है, तो जो अनुभव है उसका फर्क पड़ता है। क्योंकि कई लोग क्या होता है, बहुत थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, कुछ बोलते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें शांति का अनुभव नहीं होता। तो धीरे धीरे ये इमेजिनेशन से रियलिटी की ओर भी जाने की जरूरत है, और उसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज की भी आवश्यकता, क्योंकि मैं कैसे कोई चीज में विश्वास करूंगा। तो मैं, आप मेरा ही क्वालिफिकेशन देखे तो मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग किया, एमटेक किया, तो पहला चीज है मेरे को निश्चय बैठना चाहिए कि ये जो बोल रहा हूँ कि मैं आत्मा हूं तो वास्तव में आत्मा हूं या नहीं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी ना, तो साइंस के हिसाब से मैं कैसे समझूं? आपने मेरे को बता दिया कि हाँ आत्मा है, लेकिन मैं कैसे मानूं? तो मुझे, मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मैं साइंस से कैसे समझे? तो बहुत सारे दुनिया में भी बहुत सारी स्टडीज होती है, तो उसमें 3-4 चीजें होती थी, जिसमें जैसे री इनकारनेशन स्टडीज है ना, जहां बच्चा एक को जन्म लिया और कोई पास्ट की बातें बता रहा, उसकी उसके ऊपर रिसर्च, और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस है। ऐसे केसेस थे जहां नियर डेथ एक्सपीरियंस था, जो व्यक्ति एकदम मरने के स्टेज में था। ऐसे केसेस थे जहां डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया और फिर वापस रिवाइव कर दिया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ऐसे केसेस जहां बच्चा जन्म ले रहा है और बहुत बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, घर में कोई पेंटर नहीं, माहौल में भी कोई ऐसे पेंटिंग की कोई विशेषता नहीं, कहां से सीख के लाए, कहां से वो टैलेंट लेकर आए, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को जब देखा तो ये क्लियर होता है कि शरीर और शरीर में रहने वाली चेतन शक्ति अलग है, और हम लोगों की जर्नी वो, हम वो चेतन शक्ति है तो नेचुरली जर्नी कंटिन्यू होगी। कोई भी कारण से आज मैं ये शरीर छोड़ू तो मेरी जर्नी कंटिन्यू होगी, लेकिन अब कंटिन्यू होगी तो भविष्य क्या होगा। आज हम लोग सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हर एक अपना भविष्य भी देखते हैं ना। आज भी ठीक हो और मेरा आगे एक फ्यूचर भी हो तो मैं अपने लिए कुछ सेविंग भी रखूंगी, कल मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो। लेकिन जब हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे जानते हैं तो हमको मालूम है जर्नी आगे भी कंटिन्यू करनी है, तो मुझे ऐसे क्या एक्शन करने, क्योंकि मेरे कर्म के हिसाब से ही मेरा भविष्य डिसाइड। तो ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और उस हिसाब से मैं अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करूं। तो आज का जो ये सब्जेक्ट है ना, स्लीप मैनेजमेंट, स्लीप को कई बार हम बोलते हैं इट इज अनइंटेंशनल मेडिटेशन। मेडिटेशन कॉन्शियसली कर रहे हो और स्लीप आप स्लीप में आप वही प्रक्रिया को अनइंटेंशनली कर रहे हो। तो हम इसको देखेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो था कि हमें कितना सोना चाहिए, मेजोरिटी लोग ने 7 से 8 घंटा बोला। कोई और डिफरेंट आंसर, कोई और समझता कितना सोना चाहिए? 4 घंटे 8 घंटे एज के ऊपर होता। मैं जनरली, आपने ठीक बोला, बहुत एज सीनियर होता तो फिर उसके बाद इट हैज अ डिफरेंट इफेक्ट, क्योंकि कई और चीजें हो जाती, बट कॉमन नॉर्मली ये स्लीप थ्योरी हम बोलते हैं 7 से 70। बहुत ओल्ड एज होगा तो भी फिर डिफरेंट चीजें फैक्टर होती है, और एकदम छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी डिफरेंट चीज होती है। अच्छा, रैंडमली मैंने कुछ एनिमल्स को लिया है कि ये लोग कितना सोते हैं 24 घंटे में। तो टाइगर या शेर कितना सो रहा है? अफ्रीकन एलिफेंट ना, सबसे बड़े जानवर धरती पर, कितना सो रहा है? जिराफ कितना सो रहा है? तो आपको क्या लगता है जो धरती पर सबसे बड़े बड़े जानवर है वो इतना कम क्यों सो रहे? सबसे बड़े बड़े जानवर है धरती के, हाँ, वेजिटेरियन बहुत सारे जानवर है, अंडर कॉन्फिडेंट। भाई क्यों, इतना बड़ा जानवर है वो क्यों अंडर कॉन्फिडेंट होगा? मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा, टाइगर को काय का स्ट्रेस है? टाइगर तो जंगल का राजा है, मतलब बाकी लोग को तो फिर भी डर लगता रहता है, टाइगर को तो कोई डर नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम थोड़ा ना ह्यूमन बीइंग में क्या होता है वो समझते हैं। तो ये आप देखते हो एक चट्टान है और उसके ऊपर एक एक बूंद पानी गिर रही है, चट्टान को कुछ होगा? नहीं होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे चट्टान कितना मजबूत है और एक बूंद पानी में कुछ कोई ताकत नहीं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस गिरता रहा तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद वहां छोटा सा छेद होगा, क्रैक होगा। जितने नदी के सामने किनारों पे आप बड़े बड़े पत्थर टूटे हुए देखेंगे वो पानी के कारण हो रहा। तो एक बूंद पानी में कोई ताकत नहीं, लेकिन कंटिन्यूस गिरता रहता है तो उसका इम्पैक्ट। तो स्लीप, नींद आपके हर दिन की जरूरत है। अगर आपकी नींद समझो कोई कारण से जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, नींद में दो एस्पेक्ट आते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी, हम दोनों पे चर्चा करेंगे, तो आपको उसका फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन वो एक्युमुलेट होता है। आप देख रहे हैं कि आपका नींद पैटर्न डिस्टर्ब है, एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, वो धीरे धीरे एक्युमुलेट हो रहा है, और क्योंकि उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता तो हम लोग भी थोड़े हल्के हो जाए, अरे कोई बात नहीं, चल रहा है। लेकिन एक टाइम क्या आएगा, कोई ना कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि उतना जब उसने इकट्ठा कर लिया फिर कहीं ना कहीं बोलेंगे अच्छा वो तो बहुत अच्छा फिट बंदा था, 35 साल का, जिम जाता था, भागता दौड़ता, अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया, अचानक ये हो गया। तो अचानक नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं एक्युमुलेट हो रहा है ना, क्योंकि हर दिन वो छोटी कमी हम लोग महसूस नहीं करते तो कई बार हम अटेंशन नहीं देते, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर एवरीडे लाइफ कि हम उस नींद की इंपॉर्टेंस को समझें और एंश्योर करें कि जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो मीट करें। तो जो 3 पिलर्स है एक अच्छी हेल्थ के लिए, इसमें से 2 का तो बहुत क्लियर है, एक्सरसाइज, फूड, और तीसरा क्या है, रेस्ट। एक्सरसाइज के लिए बहुत जागरूकता है, आप कभी सवेरे देखो पार्क्स में लोग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वैसे ही खाने के ऊपर आजकल बहुत जागरूकता है ना, खाने के ऊपर तला हुआ नहीं खाएंगे, नहीं ज्यादा चीनी नहीं, ज्यादा ये नहीं। मेरे घर में बचपन में मुझे याद है कि अगर कोई मेहमान आता था तो एक क्वेश्चन पूछा जाता था, आपको ठंडा चाहिए या गर्म? गर्म बोला तो एक कप चाय। अभी पूछेंगे ठंडा चाहिए गर्म, बोले गर्म। गर्म चाहिए, चाय चाहिए कॉफी, बोले चाय। अच्छा चाय चीनी के साथ चाहिए बिना चीनी के? हाँ चीनी के साथ चाहिए। एक चम्मच लेंगे, दो चम्मच लेंगे? एक चम्मच लेंगे। मिल्क के साथ लेंगे, बिना मिल्क के लिए? ग्रीन टी लेंगे। मतलब एक कप चाय के ऊपर आज 10 क्वेश्चन है, पहले ऐसा नहीं था, एक स्टैंडर्ड चीज होती चाय। तो चलो फूड के ऊपर आपका अटेंशन है, लेकिन आप बताओ, आप अपनी लाइफ में देखो, रोज हम लोग क्या भी करते हैं, क्या हम कॉन्शियसली ऐसा कोई कार्य करते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं कि पूरे दिन मैं काम कर रहा हूं लेकिन मैं ऐसे काम करूं जो रात को मैं जब सोऊं तो मुझे अच्छी नींद आए? आपका ऐसा कोई अटेंशन रहता है पूरे दिन की एक्टिविटी में? क्या ऐसा काम करते हो आप कि रात को जब मैं सोऊं तो मुझे अच्छी नींद आए? हा हा हाँ चलो, एक ये है कि दिन को बहुत सोएंगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, बट वो तो आजकल बहुत मौका मिलता ही नहीं, नौकरी वोकरी में होते हैं तो कहाँ दिन को इतना मौका मिलता है ना। कॉन्शियसली हर एक की एक जनरल लाइफ में हम लोग सोचते हैं भाई ये तो नॉर्मल एक्टिविटी, रात को सोना है बस। हम कोई ऐसा कॉन्शियसली एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते कि कोई है ना। अब ये तीन पिलर में एक पिलर पे हमारा अटेंशन कम है और उसका हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज की डेट में ना सबसे ज्यादा एक एवरेज व्यक्ति को उसके हेल्थ के ऊपर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो स्लीप के कारण सबसे ज्यादा, बाकी सब बीमारियां को एक साइड करो, क्योंकि स्लीप आपकी हर दिन की रिक्वायरमेंट है और हर दिन वो डिस्टर्ब हो रही है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव आज स्लीप का हो रहा है और ये सबके ऊपर है। स्लीप तो सोना, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, घर में रहने वाले व्यक्ति, हर एक के ऊपर। तो हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मन और बुद्धि की शक्ति है। और क्यों ये सब्जेक्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ समय पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों में बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी में ये दो चीजों ने बहुत बड़ा चेंज लाया, जो मोबाइल और मीडिया। आप सब जानते हो ना कितने आज 80s में, वो लेट 80s में टीवी आई तो हमारे पास कितना चैनल था? एक दूरदर्शन था और एक और वो डीडी मेट्रो। आज कितने चैनल है किसी को मालूम है? कितने चैनल है? और फिर ये तो सिर्फ चैनल्स की बात है, फिर उसके बाद ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अब कितने सारे। अब ये सब का प्रभाव क्या होता है हमारे माइंड के ऊपर होता है। आज आप कहीं भी जाओ, कोई पब्लिक प्लेस में जाओ, अगर लोग वेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे? हर एक व्यक्ति अभी ये 30 ईयर्स पहले यही जगह पे जाते तो एक डिफरेंट एक पिक्चर होती, आज ये पिक्चर। 30 साल पहले बच्चा अगर स्कूल से आता है तो क्या करता था? थोड़ा सा नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश होएगा, खेलने चले जाएगा, फिर वापस आएगा, थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, और कुछ है नहीं उसके पास। अभी वो सारा टाइम ये डिजिटल इसमें, तो 30 ईयर्स के अंदर बच्चे के ऊपर, मन के ऊपर 30 ईयर्स पहले क्या प्रभाव है और आज क्या प्रभाव है, कितना डिफरेंस। आज कितना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। एक बार गांधी जी के बोलते थे 3 बंदर, ना देखना, ना सुनना, ना बोलना। अब एक किसी के हाथ में मोबाइल आ जाता है ना तो ये तीनों बंदर 3-in-1 हो जाता है, वो किसी का ना देखता है, ना बोलता है, ना सुनता है, वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग सब एडिक्टिव हो रहे हैं, एवरीबडी। अगर मैं यहां बोलूं कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोबाइल नहीं यूज करता, कोई है हाथ खड़ा करे? मोबाइल जिसके पास मोबाइल ही नहीं, मोबाइल यूज ही नहीं करता, कोई नहीं होगा। अब बस ये है कि किसी का कम है और किसी का ज्यादा, और ये बहुत एक बहुत सीरियस चीज है ना। इसके ऊपर रिसर्च किया तो जैसे कोई ड्रग्स का ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है ना, तो ये डिजिटल एडिक्शन का भी हमारे ऊपर वैसे ही इफेक्ट हो रहा है। अब आप बहुत अच्छे घर से और बहुत आपके अच्छे संस्कार है, आपने जिंदगी में कभी सिगरेट भी नहीं पिया, टच भी नहीं किया, और अचानक एक दिन आप हॉस्पिटल गए और कुछ डॉक्टर ने थोड़ा सा आपकी रिपोर्ट देखी और बोला कि आप ये नशा कब से कर रहे हो ड्रग्स का, तो आपको कितना बड़ा शॉक लगेगा, अरे भाई मैं इतना सीधा साधा, मैंने तो कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं टच करी, आप बोल रहे हो ड्रग्स ले रहा हूं। लेकिन उसने आपकी जो रिपोर्ट देखी, तो जो ब्रेन के ऊपर आपका जो इम्पैक्ट है वो जैसे किसी का ड्रग्स का इफेक्ट होता है ना, वैसा इम्पैक्ट हुआ। तो इतना सीरियस है और आज हर एक को इफेक्ट हो रहा है। इसलिए ये इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे माइंड पर हो रहा है, और उसके कारण आप देखेंगे आजकल बहुत सारे, आज जो भी फिजिकल एलिमेंट्स है ना, उसका पहला स्टेप है मेंटल लेवल पे। पहले माइंड कमजोर होता है, उसके बाद उसका इफेक्ट फिर शरीर के ऊपर होता है, और इसके इसको इफेक्ट करने के लिए आजकल ये सब चीजें फैक्टर। तो ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, पिछले 25-30 वर्षों में जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ। तो आप सबको अनुभव है कि हम लोग सब सोते हैं और कई बार हम लोगों को नॉर्मली नींद आती है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हमको नींद नहीं आती। कैसे, जैसे आप अपने घर में सोते हो, कभी कभी कहीं और गए तो आपको इतनी नींद नहीं आएगी। बेडरूम में रोज सोते, एक दिन बोलेंगे मैं डाइनिंग रूम में सो जाओ, या कभी बोला बेड पे सोते बोला आज जमीन पे सो जाओ, कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उधर बोलो चलिए इधर सो जाओ, तो नींद आएगी। तो इन लोगों के सामने भी ये चैलेंज है, इसके पास पिल्लो नहीं है। है कहीं जिनको तकिया के बिना नींद नहीं आती? तो इसके पास तकिया नहीं है। कई होते हैं जिनको अपने बेड में ही नींद आती है। आपको क्या लगता है, सो रहे या नहीं सो रहे? कई होता है जिनको सिर्फ बेडरूम में ही नींद आती है, और कहीं सोने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या लगता है, सो रहे या गहरी नींद में सो रहे? गहरी नींद में सो रहे बस। कई होता है थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा ना, उनको नींद नहीं आएगी। कैसे सो पा रहे ये लोग? हाँ, आनंद से। लेकिन कैसे सो, हाउ आर दे मैनेजिंग टू स्लीप? तो एक चीज अच्छी बात है कि हम लोग सब भी छोटे से बड़े हैं ना, समवेयर वी हैड दिस आर्ट ऑफ स्लीपिंग, वी हैव लॉस्ट इट। बड़ी एक अच्छी बात है, किसी समय अगर मेरे पास वो कला थी तो शायद मैं वापस वो कला ला सकता हूँ, कि इसी समय तो मेरे पास थी ना। तो स्लीप टाइप का मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। कभी कभी आपको अनुभव होगा, आप सोते हो और अचानक रात को आपकी आंख खुल गई, और जब खुली आंख तो आप बहुत रिफ्रेश्ड हो, लेकिन फिर आप देखते हो कि अच्छा ओहो 2 बज रहे हैं, अभी क्या करें, फिर से सो जा। होता है ऐसा अनुभव, अचानक आंख खुली बहुत फ्रेश, लेकिन बस घड़ी में देखते हैं तो सोचते अच्छा। इसका कन्वर्स, कभी आपका एक रूटीन है लेकिन छुट्टी है तो आपने ज्यादा सोए, बच्चों के साथ होता है ना, बच्चों को रोज स्कूल जाना होता है तो उनको एक उठने का टाइम, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन बच्चे क्या करेंगे, उस दिन वो लोग बहुत ज्यादा सोएंगे, 2-3 घंटा, माँ 10 बार नहीं बोलेगी तब तक उठने वाले नहीं। आज छुट्टी है, बच्चा ज्यादा सोया है, ज्यादा उसको रेस्ट मिला है, पूरा दिन आप देखेंगे वो ज्यादा चुस्ती में है, ज्यादा सुस्ती में। तो ज्यादा सोने से ज्यादा हम लोग रिफ्रेश होते हैं ऐसा नहीं है, है ना, उसका भी एक फिक्स्ड पीरियड है, उसके बाद सोने से आप एनर्जी, आपकी एनर्जी खर्च होने लग जाती है ना। तो इसलिए हमको जरूरी है कि पता चले कि भाई क्या कितना हमको ऑप्टिमम सोना चाहिए। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे सिंपल शब्दों में डिफाइन करो नींद क्या होती है, आप कैसे एक छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे नींद क्या होती है? बैटरी रिचार्ज। अच्छा चलो, हाँ आजकल बच्चे थोड़ा इससे समझते, माइंड का कंट्रोल खत्म, वो बोलेगा पागल वाले के पास भी माइंड का कंट्रोल खत्म, तो वो सो रहा है क्या? छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे, मैं ऐसे बैठा हूं मैंने बस आंख बंद कर ली, क्या इसको नींद कहेंगे? नहीं कहेंगे। अच्छा चलो, मैं उसको एक एग्जांपल से बताता हूं। जब व्यक्ति सोता है तो उसको बाहर का कुछ नहीं मालूम होता है ना, चोर कब चोरी करता है रात को, क्योंकि सोए हुए। वैसे ही एक पेशेंट जिसका ऑपरेशन होना है, डॉक्टर उसको बेहोश करता है, इंजेक्शन लगाया बेहोश किया क्योंकि ऑपरेशन करना, उसको भी बाहर का कुछ नहीं मालूम। तो क्या ये दोनों सेम है, एक व्यक्ति जो सो रहा है, एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने बेहोश किया, दोनों सेम है? क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है? नहीं समझ में आया, क्या डिफरेंस है दोनों से? दोनों को बाहर का कुछ नहीं मालूम है, एक व्यक्ति सो रहा है, एक व्यक्ति को डॉक्टर ने बेहोश किया, बताइए। एक का माइंड सो रहा है, ओके, और कुछ? हाँ एक थोड़ा सा उसको ऐसे डिस्टर्ब किया तो वो जाग जाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं जागेगा। और कोई डिफरेंस? स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ नहीं, बच्चे की तो बात ही नहीं, मैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति, हम लोग सब सोते हैं, सोते समय आप लोग को भी बाहर का कुछ नहीं मालूम, कुछ टाइम के लिए आपको बाहर क्या हो रहा मालूम नहीं है। और वैसे ही एक बगल में एक पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने बेहोश किया है क्योंकि ऑपरेशन होना है, तो ये दोनों स्टेट सेम है कि अलग है, क्या डिफरेंस है वो मैं पूछ रहा हूं। एक चलो नेचुरल तरीका, एक आर्टिफिशियल तरीका, तरीका अलग हो लेकिन उसके बाद सिचुएशन बाद में लास्ट में सेम है। वो बोल रहे ठीक है थोड़ा डिस्टर्ब किया तो ये जग जाएगा, ये नहीं जगेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताता हूं, एक व्यक्ति जिसको अनकॉन्शियस किया है और एक व्यक्ति जो सो रहा है, दोनों को बाहर का नहीं मालूम लेकिन जो व्यक्ति सो रहा है उसको सपने आ रहे हैं और जिस व्यक्ति को बेहोश किया है उसको सपने नहीं आ रहे। तो बाहर का मालूम नहीं है लेकिन बेहोश व्यक्ति के अंदर भी साइलेंस है, बट नींद में अंदर माइंड चल रहा है इसलिए आपको सपने आ रहे हैं। वो सबसे बड़ा डिफरेंस है, बाहर का आपको नहीं मालूम, अंदर आपका माइंड चल रहा है और अंदर आपका माइंड अलग अलग स्टेज पे चलता है, तब हमको पता चलता है नींद में क्या हो रहा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जैसे आप लोग ने बोला, इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच ए पर्सन कैन बी अराउज्ड, उसको थोड़ा सा ज्यादा आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको, देखो आपको कुछ दिख रहा नहीं, आंख बंद है, थोड़ी सी आवाज होगी आपको सुनाई नहीं देगा, थोड़ी सी स्मेल चेंज होगी, थोड़ा सा कोई टच करेगा आपको नहीं पता चलेगा। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, इससे आप थोड़ी देर के लिए डिटैच होते हो। तो एक बहुत अच्छा शब्द है, पार्शियल डिटैचमेंट और विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस, हमारी पांच कर्मेंद्रियों से थोड़ी देर के लिए आप डिटैच होते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटैचमेंट। अगर आप कोई कारण से इन कर्मेंद्रियों से डिटैच नहीं हो पाए, आपके सोने का कोई पर्पस नहीं, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए हमको ये कर्मेंद्रियों से डिटैच होना पड़ेगा। पांच कर्मेंद्रियां सब जानते हैं। अब मैंने ये पॉइंट को क्यों हाईलाइट किया, आपको जब मेडिटेशन सिखाते हैं तो मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं, सबसे पहला स्टेप सिखाते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए अपने को इस शरीर से अलग समझे, कुछ समय के लिए हम इन कर्मेंद्रियों से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। स्लीप में आप रिचार्ज होते हो, रीएनर्जाइज होते हो, है ना, शक्ति मिलती है। पिछले दिन रात को आप नहीं सोए तो अगले दिन आपका क्या हाल होगा, कोई मैकेनिज्म है ना आपको वापस शक्ति देने का। मेडिटेशन में अगर मैं बोलता हूं आपको शक्ति मिलती है तो उसका भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो जो मैकेनिज्म है, थोड़ी देर के लिए आपको इन कर्मेंद्रियों से डिटैच होना। स्लीप में हम कॉन्शियसली नहीं करते, मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली करते, बट प्रिंसिपल थोड़ी देर के लिए आपको कर्मेंद्रियों से डिटैच होना, वो उसका लॉजिक है क्यों हम उस समय हम मेडिटेशन में अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा मैंने पूछा कितना सोना है, सेकंड क्वेश्चन पूछूं क्यों सोना है, रोज सोते हैं क्यों सोना चाहिए हमें, रिचार्ज करना, ठीक है रेस्ट के लिए, और कुछ क्यों सोना चाहिए हमें, रिफ्रेश होना। अब मेरा क्वेश्चन है कि हमको अपने आप को रिचार्ज करना है, रिफ्रेश करना है, बॉडी को रिचार्ज करना है या माइंड को रिचार्ज करना है, बॉडी को नहीं करना, बॉडी को रेस्ट नहीं चाहिए। हाँ हाँ तो दोनों को चाहिए या एक को चाहिए या क्या समझे, दोनों, ओके दोनों को सेम बोले 50-50% या हम कुछ परसेंटेज में डिफरेंस करें, 80-20। अच्छा 80 किसके फेवर में, पक्का? हमारा नॉर्मल थिंकिंग क्या है, किसी दिन आपने बहुत सामान उठाया, ये उठाया, तो फिर आप क्या बोलते हैं, अभी मैं थक गया मैं रेस्ट करने जा रहा हूं, है ना। कन्वेंशनली हम ऐसा सोचते हैं कि बॉडी के लिए है, स्लीप में हमको रिचार्ज करना है अपने आप को 90% बॉडी के लिए, बट स्लीप थ्योरी बोलती है वो गलत है। स्लीप का प्राइमरी पर्पस माइंड को रेस्ट देना, माइंड को रिचार्ज करना, बॉडी को भी है लेकिन प्राइमरी पर्पस माइंड। तो हमारे गिरीश भाई ने आपको नींद का एक एग्जांपल दिया ना, ड्रीम था, मैं भी आपको एक बात बता रहा हूं। समझो एक पहाड़ी है ना, एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप सबसे ऊपर पहुंचे और उसके बाद एक खाई है अचानक, आप क्या करोगे? आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते जॉगिंग करते करते एकदम ऊपर पहुंचे और अचानक खाइए, क्या करोगे? रुक जाएंगे। और कुछ क्या करोगे? क्या करोगे? जंप मारोगे? कौन मारेगा भाई जंप? खाइए। हाँ, व्यू देखेंगे, वो होता है, वो एकदम ऊपर पहुंचे, रुक जाएंगे, नजारा देखेंगे। अब वापस यही सिचुएशन है, लेकिन एक कमरा है, उसके ऊपर एक बेड है, उसमें आप सोए हुए हो, आप नींद में हो, आपको एक सपना आ रहा है। सपना आता है सबको? ओके। तो सपने में वही पहाड़ी है और आप दौड़ रहे हो, दौड़ते 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 आप एकदम टॉप में पहुंचे और अचानक खाइए, क्या करोगे? आता है ना ऐसे कभी कभी, ऐसा ऐसा अचानक सपना, तो घिर जाएंगे, डर जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन दोनों समय में पहाड़ी भी सेम थी, व्यक्ति भी सेम था, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों? तो उसका एक सिंपल सा रीजन है, जब आप जागे हुए थे, जब टॉप में पहुंचे, खाई है, आपको रुकना है, रुकने का फैसला कौन कर रहा है? माइंड। नींद के समय माइंड रेस्ट पर है, देयर इज नोबडी टू टेक दैट डिसीजन। तो क्या होता है, दौड़ते दौड़ते आप दौड़ जाते हो तो घिर जाते हो तो खाई से घिर रहे हो, बट हो कहां रहा है ये? सपने में। तो व्यक्ति घबरा जाता है, तो डर जाएगा ना, गिरेगा तो डरेगा ही क्योंकि उसका उस समय माइंड एक सिंपल सा डिसीजन लेने वाला कोई नहीं। तो नींद का पर्पस माइंड को रेस्ट देना है और माइंड को रिचार्ज करना है ना। तो अब ये नींद से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, कैसे हम लोग अभी नींद के बारे में पता चला, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो? ECG हम लोग ने सब सुना है, बाकी सारे इतने नहीं होते, बाकी नींद से कनेक्टेड EEG बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। वो हमारी इधर कनेक्ट करते हैं जिससे कि हमको ब्रेन हमारा किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है वो मेजर करते। तो स्लीप थ्योरी बोलती है कि अगर हमें अच्छी नींद चाहिए तो दो कंडीशन है, जब आप सोओगे तो आपका माइंड भी रेस्ट में होना चाहिए, रेस्ट मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन में होना चाहिए, और बॉडी भी कंफर्टेबल सिचुएशन अच्छी नींद के लिए। अगर आप सोने गए और बहुत ठंडी लग रही है तो बॉडी कंफर्टेबल है, बहुत गर्मी है कंफर्टेबल है, तो आप पहले कंफर्टेबल करने की कोशिश करोगे ना, तभी तो आपको नींद आएगी। तो अच्छी नींद के लिए आपको बॉडी को भी कंफर्टेबल करना और माइंड को भी। आज की लाइफस्टाइल में हम दोनों को अनकंफर्टेबल करके सो रहे हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इफेक्ट हो रहा है। बॉडी को कैसे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं? पहले के समय में लाइट नहीं होती थी, लोग अर्ली डिनर कर लेते थे, जल्दी सोते थे, और जनरली वो रात को खाना लाइट खाते थे। आज क्या है, हम लोग लेट खाना खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं। आपने हैवी खाना खाया, खाने को डाइजेशन का काम किसका है? तो बॉडी कंफर्ट में है या अभी बॉडी को काम मिला हुआ है? तो बॉडी तो अनकंफर्टेबल। माइंड को कैसे अनकंफर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पूरे दिन काम कर रहे, ये कर रहे, तो रात को अभी फ्री हुए, अभी हमारा टाइम, तो अब मैं टीवी देखूंगा, उसमें न्यूज देखूंगा, न्यूज क्या आएगा, ट्रंप जी ने ये बोल दिया और ये बॉम्ब वहां गिरा, मतलब इट इज, आप मेजोरिटी न्यूज देखो तो इट इज नेगेटिव न्यूज। अब सोने से पहले मैंने ये सारा इंफॉर्मेशन अपने पास डाला, अब मैं जब सोने जाऊंगा तो बहुत टाइम ये माइंड में चलता रहेगा। मेरा काम क्या था? माइंड को रेस्ट देना, लेकिन उससे पहले मैंने इतना सारा काम दे दिया। तो अगर सोने से पहले मैं ऐसे इंफॉर्मेशन लेके सोऊंगा तो मेरी क्वालिटी ऑफ स्लीप को तो फर्क पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो अब हमने ये सब कनेक्ट कर दिया है ना, एक व्यक्ति को सुलाया, ये सब कनेक्ट कर दिया, अब सारे पैरामीटर्स चेक करें, और हम लोग का मेन पैरामीटर EEG। तो हम लोग ने देखा कि एक नॉर्मल व्यक्ति चार स्टेजेस में उसका माइंड चलता है। पहला बीटा फ्रीक्वेंसी, जब माइंड अभी जब जागृत अवस्था में है ना, होपफुली सब जागृत अवस्था में, कई बार स्लीप स्लीप सुन के भी व्यक्ति को नींद आने लग जाती है। तो इस समय माइंड जब एक्टिव है और चल रहा है तो हमारी 13-30 साइकिल्स पर सेकेंड है ना। फिर हम जब नींद की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा माइंड और कम होता है, रिलैक्स होता है, तो उसको हम अल्फा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 8-12। फिर हम नींद की तरफ जाते हैं तो हम उसको थीटा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, माइंड और शांत होता है। और नींद के समय कुछ समय के लिए हम गहरी नींद में जाते हैं, उसको हम लोग फिर डेल्टा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 2-4 साइकिल्स पर। तो हमारा माइंड ये चार स्टेजेस में जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने एक ग्राफ के रूप में बताया। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे जो हमारी एक्स एक्सिस है, रात को 11 बजे एक व्यक्ति सो रहा है और सवेरे 6 बजे वो उठ रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस है, उसमें हम देखेंगे 1, 2, 3, 4 स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, मतलब बीटा अल्फा थीटा डेल्टा। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। पहली चीज, हम लोग जो भी सोते हैं, और अगर मैंने आपसे पूछा होता कि आप कितना सोते हो, तो हो सकता कोई बोलता 6 घंटा, कोई बोलता 7 घंटा, सारे आंसर्स गलत है। हम लोग साइकिल्स में सोते हैं और एक साइकिल करीब 100 मिनट की होती है। तो वो दिख रहा है आपको, वो जो साइकिल है वो करीब 100 मिनट की होती है ना, ये करीब 100 मिनट का है। ये जागृत अवस्था है, थोड़ा सा रेस्ट, नींद, गहरी नींद। तो थोड़ा समय के लिए ये 100 मिनट में करीब 20 मिनट हम गहरी नींद में रहते हैं और फिर ये वापस माइंड ऊपर की ओर जा रहा है और ये इसको हम बोलते हैं REM, REM स्लीप। फिर माइंड वापस गहरी नींद की तरफ जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। तीसरी साइकिल में आप देखेंगे ये जो गहरी नींद है थोड़ी कम हो जाती है। फिर चौथी साइकिल में आप देखेंगे कि ये गहरी नींद मिलती ही नहीं, थोड़ी बहुत आपको ये थीटा फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसके आगे तो ये भी नहीं मिलती। नींद का पर्पस है माइंड को रिचार्ज करना। माइंड रिचार्ज होता है ये गहरी नींद में। अगर ये गहरी नींद नहीं मिली तो माइंड वो वैसे रिचार्ज नहीं होता। तो 100 मिनट में करीब 20 मिनट। कितने साइकिल में हमको ये गहरी नींद मिल रही है? 3 साइकिल। एक साइकिल कितने मिनट की है? 3 साइकिल कितने मिनट हुए? 300 मिनट कितने घंटे हुए? स्लीप थ्योरी कहती है कि व्यक्ति को 24 घंटे में 5 घंटा अगर मिलता है तो काफी है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हम साइकिल्स में सोते हैं, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस में है ना, जहां ये शिफ्ट सिस्टम ड्यूटी होती है। BSF में हम लोग गए थे तो एक जवान बोल रहा था, मैं तो कितने वर्षों से सोया ही नहीं। क्यों, उसने ऐसा बोला? बोलता हम लोग तो क्या है, रात को हमारा शिफ्ट है, फिर ये शिफ्ट है, फिर ये शिफ्ट है। तो उसका स्लीप का मतलब क्या होता है कि रात को 10 बजे सोऊं, सवेरे 6 बजे उठूं। बोलता ऐसा मौका तो कभी मिलता ही नहीं। लेकिन स्लीप थ्योरी कहती है वास्तव में हम भी साइकिल्स में सोते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो साइकिल्स में सो रहा है। आइडियल कंडीशन नहीं है, पर ठीक है, इतना नुकसान नहीं है जितना कि मैं समझता हूं। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे मैं सो ही नहीं पाता, वो तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आपको 3 साइकिल्स में गहरी मिलती, तो 5 घंटा। तो आप ये कैंपस में देखेंगे बहुत सारे लोग जो यहाँ परमानेंटली डेडिकेटेड है, कई बार वो पूरा दिन काम करते हैं। रात को सोने का 10 बजे 10:30 होता है और मॉर्निंग को 3:30 बजे उठ जाते हैं। और कई वर्षों तक इनकी लाइफस्टाइल और बहुत फिट, कोई प्रॉब्लम है ना, बहुत कंफर्टेबली सो रहे। तो अगर हमारा माइंड हम लोग सही तरीके से करते तो 5 घंटा आपके लिए सफिशियंट है। बट वो नींद का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सो रहे हैं और क्वालिटी है नहीं, तो फिर तो नेचुरल आपको फायदा नहीं हो। बट 5 घंटा शरीर के लिए काफी होता है। तो यही चीज को एक वापस मैंने बताया, 100 मिनट है पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, और फिर एक REM स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। इसमें आप देखेंगे ना माइंड वैसे ही है जैसे कि जागृत अवस्था में, माइंड वैसे ही चल रहा। तो यहां एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो और यहां एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये REM स्लीप बढ़ती जाएगी और ये तो कम हो जाएगा, ये बढ़ती जाएगी। यानी आप सो रहे हो लेकिन आप एनर्जी कंज्यूम करते जा रहे हो, तो कुछ समय के बाद आपको फायदा नहीं हो रहा। हाँ जी बोलिए। नहीं, वो आपको कैसे पता साइकिल फोर है? उसका रीजन है कि आपका शुरू का ही पोर्शन डिस्टर्ब्ड है, इसलिए हम लोग को फिर पीछे वो लगता है कि गहरी नींद है। दूसरा, स्लीप के साथ क्या चीजें होती है, कुछ चीजें आप हैबिट बना लेते हो। कई लोग बोलते हैं हमको तो 7 घंटा नहीं नींद आई तो मेरे तो अगले दिन सर दर्द होगा। वो उसने एक हैबिट बनाई है, रिक्वायरमेंट नहीं है, हैबिट बनाई है। हैबिट बनाएंगे तो उसका फर्क होगा। तीसरी चीज, स्लीप के साथ इमोशंस का भी कनेक्शन होता है। क्यों, ये सब्जेक्ट में सिर्फ एक मेडिकल साइंस नहीं बता सकता और सिर्फ एक साइकोलॉजी वाला नहीं बता सकता, दोनों को रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इमोशंस देखो, आप खुशी में है, जैसे बिजनेसमैन है, उसका वो सीजन है, उसकी बहुत कमाई है, उसको नींद नहीं आएगी, है ना। तो कई बार इमोशंस का भी नींद के साथ कनेक्शन होता है, इसलिए कुछ चीजों में आप एकदम सीधा ही उसको वैसे नहीं बता सकते, क्योंकि थोड़ा सा वो इंटर रिलेटेड है, कई चीजों से कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे स्लीप में यहां ये बढ़ता जाएगा और ये कम होता है। ये REM स्लीप ना हम सबके पलके कुछ समय के लिए थोड़ी थोड़ी ऐसे हिलती रहेगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ना अल्फा, जो थोड़ा सा एक लेवल शांति वाला, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इतना इजी है। जैसे अभी यहां गिरीश भाई मेडिटेशन करा रहे, कोई भी बहन कोई भी आपको थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन बताए, आप बस उन बातों को अपने मन में विचार करो, आपका माइंड एक लेवल नीचे आ जाएगा, इतना सिंपल। और अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप और मन को शांत कर सकते हो। तो इसीलिए मेडिटेशन का वैल्यू है। आप कहीं भी हो, थोड़ी देर वो आप वो पॉजिटिव और एलिवेटेड थॉट्स को भी विचार करते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। तो आज की डेट में इसकी बहुत आवश्यकता। तो पूरे दिन हम देखते हैं कि कैसे बैटरी जैसे ना फुल चार्ज है, फिर डिस्चार्ज होती है पूरे दिन में, रात को फिर वापस सोते हैं तो चार्ज होती है। अब हम सो रहे हैं लेकिन वो पूरी चार्ज नहीं हो रही, तो क्या होगा अगले दिन? आपका मोबाइल आधा ही चार्ज है तो पूरा दिन चलेगा? हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा फोटो लगता है, आप लोगों ने देखा है फोटो, मंडे में कैसा चेहरा होता है और सैटरडे में कैसा है, संडे में कैसा है, जनरली कौन सा चेहरा रहता है आप लोग का? थर्सडे वाला। अच्छा क्या? अच्छा, ये मैंने ये चित्र इसलिए दिखाया, मैंने क्यों उसके साथ रिलेट किया, ये चित्र आप एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। देखो, अगर मैं कमजोर हूं तो मेरे को बाहर की चीजें प्रभावित करती है। अभी मंडे का वर्क एनवायरनमेंट अलग है, सैटरडे का वर्क एनवायरनमेंट, तो मेरा मूड अलग है ना। मेरी किसी ने थोड़ी तारीफ करी मैं खुश हो गया, मेरे बारे में थोड़ा किसी ने ऐसा बोल दिया मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं दुखी हो गया। मैं कमजोर हूं तो बाहर की सब चीजें मुझे प्रभावित कर रही। अनफॉर्चुनेटली बाहर की चीजें आज एक नेगेटिव रूप से ही प्रभावित करती। तो ये जरूरी है मुझे शक्तिशाली होना। मैं शक्तिशाली हूं तो बाहर की चीजें मुझे नहीं प्रभावित करेगी, मैं बाहर की चीजों को प्रभावित करूंगा। आज वो बैटरी रात को सोते हैं लेकिन स्लीप का ना क्वांटिटी है ना क्वालिटी है, और होता क्या है कि अगले दिन के लिए आपकी बैटरी पहले से ही कमजोर है। तो आप कमजोर हो तो आपका बाहर का एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट कर रहा है। और मैंने कहा बाहर का एनवायरनमेंट अनफॉर्चुनेटली आज मेजॉरिटी नेगेटिव, तो मैं ही परेशान हूं, पूरे दिन मेरा मूड चिड़चिड़ा है, थोड़ा सा अपसेट टाइप है, थोड़ा दुखी टाइप है, बिकॉज आई एम वीक फ्रॉम इनसाइड। तो इसका एक बहुत अच्छा, अपनी माइंड की एनर्जी को कंजर्व करना, एक है क्रिएट करना, एक है कंजर्व, काम तो करना है लेकिन मैं कम से कम एनर्जी यूज करूं, तो एक पॉजिटिव सोचना, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना एक बहुत बड़ी कला है। दूसरा, आपका माइंड सवेरे नेचुरल नींद के बाद सवेरे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। तो आप देखते हैं यहां मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं। मॉर्निंग मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी लोग मेडिटेशन को किससे रिलेट करते हैं कि मेरे को शांति मिलेगी पीस के साथ। बट मेडिटेशन का पर्पज सिर्फ पीस नहीं है, मेडिटेशन का पर्पज उससे ज्यादा है। जितना मैं अच्छी तरह से एकाग्रता से मेरा मन मेडिटेशन में रहेगा तो मैं शक्ति का अनुभव करूंगा, खुशी का अनुभव करूंगा और आनंद का अनुभव करूंगा। तो मेडिटेशन का पीस और शांति ये फर्स्ट लेवल है। एक कॉमन व्यक्ति सोचता बस इतना है, बट एक्चुअल में उसका रिक्वायरमेंट, उससे प्राप्ति बहुत ज्यादा है। तो वो मैं सबसे ज्यादा कब कर सकता हूं? जब मेरा मन सबसे पावरफुल है। इसलिए मॉर्निंग का मेडिटेशन का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप देखेंगे हमारे हेल्थ के ना ये सब फैक्टर्स नींद में भी डाउन होते हैं, और यही चीज अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो यही हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक, ये सब का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज ये ईईजी कनेक्ट करें, आप में से भी किसी का कनेक्ट करें और थोड़ी देर आप वो गाइडेड मेडिटेशन करो, तो आप देखेंगे आपका ईईजी यानी माइंड शांत होएगा। वो एक अल्फा लेवल आना हर एक के लिए पॉसिबल है, बहुत इजी। तो मैं एक फोटो दिखाता हूं, ये है दादी जानकी जी और ये हमारे है ना चीफ थी बहुत टाइम से, और ये फोटो बहुत पुरानी है, 1978 की फोटो है, और ये यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उनके ऊपर एक रिसर्च किया गया, 1978 की बात है। तो वो जाग रही थी और उनसे ऐसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं और उनका ईईजी चेक कर रहे हैं। तो ईईजी में कौन सी वेव आनी चाहिए, व्यक्ति जागा होता तो कौन सी वेव आती है? बीटा फ्रिक्वेंसी 13 से 30, उसके नीचे अल्फा, उसके नीचे थीटा और सबसे नीचे डेल्टा। ये महिला जागृत थी और इसका मन डेल्टा फ्रीक्वेंसी में था। हमारा डेल्टा फ्रीक्वेंसी कब आता है? स्लीप में भी थोड़े समय के लिए। तो साइंटिस्ट लोग बहुत उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक जागृत महिला का मन इतना स्थिर कैसे है? तो उसने कहा कि मैं राजयोग का मेडिटेशन का अभ्यास करती हूं। तो मेडिटेशन में वो कैपेबिलिटी, वो एक टूल है, वो कैपेबिलिटी है कि मैं मन को इतना शांत कर सकता हूं। उस टूल को मैं कितना यूज करता हूं वो हर एक के ऊपर अपने आप, बट वो टूल में बहुत ताकत है। तो उस समय उनको टाइटल मिला मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन अर्थ। और एक पावरफुल माइंड होगा तो उसके शरीर का क्या इफेक्ट होगा? पॉजिटिव इफेक्ट होगा ना। तो दादी जानकी 2020 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लास्ट तक वो पूरे विश्व में चक्कर लगाती थी, और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उनकी एज थी 104 इयर्स तक, और पूरे 104 इयर्स में भी वो पूरे विश्व में चक्कर लगाती थी। देखो तो एक पावरफुल माइंड का कितना पॉजिटिव है। तो फाइनली समराइज करना है तो अगर हमें अच्छी नींद चाहिए तो हमें क्या चाहिए, फूड के बारे में क्या करना है, रात को अर्ली और लाइट। माइंड के लिए क्या करना है, सोने से एक दो घंटा पहले, है ना, ये जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ये सब चीजें नहीं हो। वाटर के लिए क्या करना है, रात को सोते समय अगर मैं बहुत पानी पीता हूं तो मेरे को फिर बीच में उठना पड़ेगा ना, वॉशरूम जाना है तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक करे। और टाइम के लिए क्या है, अगर हो सके तो एक फिक्स टाइम हो सोने का, और अगर कोई कारण से जैसे किसी की ड्यूटी या शिफ्ट सिस्टम है तो ये हम समझें कि हम साइकिल्स में सोते हो। तो अगर हम ये चीज करते हैं और सोते समय अपने मन को शांत करते हैं तो आप देखेंगे आपका मन जब आप सोएंगे थोड़ी समय में भी आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होगी, और ये हर दिन का ये जो प्रभाव है ना ये आपको बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारे पास इतना ही था, और किसी के भी कोई प्रश्न है नींद से रिलेटेड, कईयों के कई प्रश्न होते हैं, हम एकाध प्रश्न ले सकते हैं, उसके अलावा मैं फिर यही हूं, आप कभी भी डाइनिंग में या कभी आप कोई पूछ सकता। किसी के कोई क्वेश्चन है, हम इसलिए भी समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि फिर इसके बाद सिस्टर शिवानी का भी प्रोग्राम है, है ना, और ऊपर वाले हॉल में ये लोग नीचे क्यों आ रहे हैं फिर सर? अच्छा, वो गलती से आ रहे थे, मैं सोचा शायद इधर शिफ्ट हुआ इसलिए। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।